सप्तम दिवस बड़े निर्विघ्न रूप से और अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आज हम लोग ब्रज की लीला का वर्णन आज समाप्त हुआ। अब हम लोग द्वारका लीला में मथुरा और से अब द्वारका लीला में हम लोग प्रवेश करें। किंतु भगवान की ये लीलाएं नित्य हैं। इधर द्वारका में लीला चल रही है और उधर ब्रज में भी वो लीलाएं चल रही है। किंतु सौभाग्यवान जी उसको देख पाते हैं। अभी भी ब्रज में मथुरा में द्वारका में भी ये लीलाएं चल रही हैं। बहुत सौभाग्यवान जी साधन भजन के बाद में इसको देख पाते हैं। जिस समय में द्वारका की लीला चल रही है उस समय में अपर प्रकाश में हम लोग उसे देख नहीं रहे हैं, किंतु तो भी ब्रज में वो लीलाएं नित्य चलती हैं। अभी हम लोग कृष्ण के कृष्ण मथुरा में अब आ गए हैं। उद्धव जी भी गोपियों की नई स्मृति और ब्रज की नई स्मृति लेकर के कृष्ण से मिले। कृष्ण जिस दिन से उद्धव गए हैं उस दिन से मथुरा ब्रज की तरफ ही टकटकी लगा करके देख रहे हैं। उद्धव कब आए, गोपियों की क्या दशा है, बड़ी उत्सुकता से कौतूहल से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर में अब ये प्रश्न एक होता है जहां आदमी को अधिक प्रेम मिलता है वही रहता है, जहां उसको अधिक प्रेम मिलता है वो जरूर वहीं पर। कृष्ण को मथुरा में प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है और ब्रज में भी मिलता है। दोनों में से किधर का पल्ला भारी है? ब्रज के लोग कृष्ण को अधिक प्यार करते हैं न मथुरा के लोग प्यार करते हैं? देवकी और वसुदेव जितना प्यार करते हैं और नंद यशोदा उनको प्यार करती हैं, दोनों का पल्ला किधर भारी है? नंद यशोदा प्यार करते हैं वो ना देवकी वाला, मथुरा की रमणियां कृष्ण को प्यार करती हैं और वृंदावन की रमणियां भी प्यार करती हैं, किंतु दोनों में से अधिक किसका है? तो कृष्ण को यदि वृंदावन में ही अधिक प्रेम मिलता है और वहां के लोग अधिक प्यार करते हैं तो कृष्ण वृंदावन छोड़कर के मथुरा क्यों चले गए? पहला तो प्रश्न ये, क्यों छोड़ करके चले? दूसरी बात, बिना यशोदा मैया के गोपियों के वो एक क्षण भी नहीं रहते थे, छोड़ करके मथुरा में किस लिए? दूसरी बात, कोई काम के लिए कोई कहीं जाता है, कहीं भी कोई जाता है तो वहां से सब समय चिंता करता है कि मैं कब अपने घर में लौटूं। अभी हम और की तो बात क्या, मथुरा वाले लोग अभी वृंदावन जाएंगे, एक दिन रहेंगे, दो दिन रहेंगे, चार दिन रहेंगे, पांच दिन रहेंगे, किंतु सोचे क्या घर कब लौटे? तो कृष्ण तो जन्म से लेकर के वृंदावन में ही रहे, 12 वर्ष तक की आयु, तो फिर वो गए यदि मथुरा में, लड़ाई झगड़ा किया, कंस को मारा, उनका काम समाप्त हो गया तो अपने घर में क्यों नहीं लौट आए? एक और भी बात है, किसी कारण से यदि वो ना लौट सके अपने घर में माता पिता के पास, किंतु न आए कोई बात नहीं, न आए कोई बात नहीं, किंतु क्या दो चार दिन के लिए भी नहीं आ सकते हैं? आदमी चाहे जो कुछ भी हो, राजा भी हो जाए, सम्राट भी हो जाए, राष्ट्रपति भी हो जाए, तो अपनी मातृभूमि में आने के लिए वो कभी एक दो दिन के लिए दिल्ली से नहीं चला आएगा, आने के लिए तो इच्छा करती है, तो कृष्ण क्यों नहीं आए? एक और भी बात है, कृष्ण अपने आप भले न आए किंतु दूरी कितनी है मथुरा और वृंदावन की? दो अंगुल तो दूरी है ना कि अधिक। वृंदावन की और मथुरा की सीमा मिली हुई नहीं है, दो अंगुल, एक अंगुली इधर एक अंगुली इधर, दो ही अंगुली का अंतर। तो क्या वो ब्रज से मथुरा में प्रवेश नहीं कर सकते थे, नहीं आ सकते थे? तो क्यों नहीं मथुरा से वो वहां पर गए? और दूसरी बात, अपनी मैया, उनको रुपए पैसे की कमी थी वहां पर द्वारका में, रुपए पैसे की तो कमी थी नहीं, कहे से गोपियां इतनी हजार आएंगी तो गोपियों को कहाँ रखूंगा, मैया को कहाँ रखूंगा? देवकी वसुदेव के लिए घर वहां पर समुद्र में बन गया, लाखों लोगों के लिए यहाँ के जो गए थे वहां पर बन गया, तो क्या एक नंद और यशोदा जी के लिए घर नहीं बन जाता वहां? उसमें वो नहीं रख सकते थे? यदि 18,000 की 16,000 108 उनकी रानियों के लिए महान बन सकते हैं, तो अभटन घटन पटियसी सर्वशक्तिमान कृष्ण के लिए विश्वामित्र उनको विश्वकर्मा को ऑर्डर दे देते तो वहां पर जगह की कमी थी द्वारका में, इन गोपियों के लिए भी वहां पर क्या स्थान नहीं बन जाता? तो गोपियों को और नंद बाबा को, बाबा को अपने नहीं आ सकते थे, इनको वहां बुला करके रख सकते थे, तो क्यों नहीं बुलाया उनको? एक आदमी नौकरी करने के लिए दिल्ली चला गया, अब यहां पर उसके माता पिता वृद्ध हैं, पहले अपने पत्नी को ले गया, बच्चों को ले गया, अब पिता माता रहे, उनको कोई पानी देने वाला नहीं, तो वो अपने माता पिता को दिल्ली नौकरी जहां करता है नहीं ले जाता है? तो वैसे ये कृष्ण अपनी गोपियों को, मैया को, पिता को, उनको क्यों नहीं ले गए? इतने सारे ढेर प्रश्न हैं, इसका सामंजस्य कृष्ण को ही करना है, उत्तर कृष्ण को देना है। गए तो क्यों गए, इनको क्यों नहीं बुला दिया? दो चार दिन, एक दिन न हो, एक दिन आए सवेरे और शाम को माता पिता से मिल करके, गोपियों से मिल करके चले जाए, तो एक दिन भी नहीं आए। दूसरी बात, अपने नहीं आए, जो सांत्वना अपने से मिल सकती है उद्धव के भेजने से, उद्धव सांत्वना दे आएंगे कृष्ण के बदले, कोष नहीं संभव। दूध का स्वाद चूने के मिले हुए पानी से, सफेदी के मिले हुए पानी से क्या उसका उसकी तृप्ति होती है? ये सब सारे प्रश्न, इनका उत्तर देना तीन चार घंटे का काम है, थोड़े से संक्षेप में भी, तब तक हमारी कथा तो कहां रह जाएगी। इसलिए इसका क्रमशः यदि होगा उत्तर पीछे देंगे। पहले केवल इसी का एक उत्तर देते हैं कि क्यों ये वृंदावन छोड़कर के रसमयी भूमि जहां उनको अधिक प्रेम मिलता है तो वहां पर चले। पहली बात तो ये है कि कृष्ण के लिए तो सभी भक्त लोग हैं, छोटे भक्त भी हैं, बड़े भी भक्त हैं, मध्यम कोटि के भी भक्त हैं। तो कृष्ण क्या उत्तम भक्तों के लिए छोटे और मध्यम भक्तों को छोड़ देंगे तो उनके ऋणी हो जाएंगे? भक्तों में और कृष्ण में यही वैशिष्ट्य है, खूब अच्छी तरह से समझना। लोग इसका उत्तर नहीं दे पाते, इन सोचते हैं कि क्यों कृष्ण चले गए और आए क्यों नहीं, गोपियों को निष्ठु बेदर्दी होकर के छोड़ क्यों दिया। हमारे संतों ने, आचार्यों ने बहुत अनुसंधान करके, भजन करके इन सब चीजों का उत्तर निकाला है। कृष्ण से ही उत्तर मांगा, कृष्ण ने इनको उत्तर दिया। तो कह रहे हैं कि यद्यपि यहां के भक्त लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ भक्तों के लिए और बाकी सबको छोड़ देंगे तो उनकी दयालुता कहां रही? कृष्ण की प्रतिज्ञा है, जे यथां माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा ही हमारा भजन करता है मैं वैसे ही उस भजन का प्रत्युत्तर देता हूं। जितने कोटि के भक्त हैं, जितने प्रकार के भक्त, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण के लिए अपना 16 आना चित्त देता है, कृष्ण के लिए कोई 8 आना चित्त देता है, कृष्ण के लिए अपना 1 पैसे का चित्त देता है। आखिर देता तो है, तो कृष्ण की प्रतिज्ञा है जो 1 आना देगा तो 1 आना, 2 आना देगा तो 2 आना, 1 रुपया देगा पूरा तो कृष्ण उसको पूरा दे देंगे। इसलिए ब्रज के भक्तों को छोड़ करके और कहीं नहीं जाएंगे ये संभव पर नहीं होंगे, उनके लिए सब भक्तों के पास में। एक पिता है, उसके 5 पुत्र हैं, एक बड़ा बुद्धिमान है, बहुत रुपया रोजगार करता है। एक दूसरा पुत्र है, वो भी कुछ कुछ करता है किंतु पूरा नहीं करता। और एक लड़का अंधा है और एक लड़का लंगड़ा भी है। तो जो धनी का, जो धनी है उसी पर तो उनका स्नेह टिक रहेगा, न किसके ऊपर में रहेगा। जो बेचारा कुछ खा नहीं पाता, लंगड़ा है, विधवा है या अंधा है, उनका स्नेह उस पर अधिक रहेगा, क्योंकि ये अपना कुछ कर नहीं सकता। तो कृष्ण का जैसे जो भक्त हैं ठीक उसी का अनुरूप में देते हैं। गोपियों के प्रेम का तो वो उत्तर ही नहीं दे सकते, उस ऋण को वो चुका नहीं सकते। क्यों नहीं चुका सकते? इसलिए कि गोपियों ने अपना सर्वस्व कृष्ण को दे दिया है और वो एकनिष्ठ हैं। एकनिष्ठ माने क्या? गोपियों को कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं। गोपियों को पति हैं, पतियों से कोई संबंध नहीं। गोपियों का कोई पुत्र नहीं है। जो कृष्ण में रास में सम्मिलित हुई और कृष्ण की प्रियसियां हैं, उनको कोई भी संतान नहीं। संतान मरने से कृष्ण उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसको वो यज्ञ पत्नियों जैसा उनको लौटा देंगे। आने तो यह रसाभास हो जाएगा। इसलिए उन गोपियों को जिनके पुत्र संतति थी उनको पतियों ने रोक लिए और तब वो विरह के रूप में आग में जल करके और तब रास में सबसे पहले पहुंची। तो गोपियां हैं एकनिष्ठ और कृष्ण हैं बहुनिष्ठ। उनके बहुत लोग हैं। एक तो ब्रज में ही लाखों करोड़ों गोपियां हैं, सबको अपना अपना मन दे रखा। एक गोपी से भेंट हुई, कहेंगे जी देखो तुम हमारी सबसे प्राण प्रिया है, राधा जी से कहें। और थोड़ी देर के बाद में यदि चंद्रावली जी मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे? तुम हमारी प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। यदि अकेले में ललिता जी मिल जाएंगी तो कहेंगे मैं किसी को प्यार नहीं करता, तुम ही को प्यार करता हूं। सब काम बंद रखते हैं। जब रुक्मी और सत्यभामा से मिलेंगे तो कहते देखो मैं व्रत को छोड़ करके तुम लोगों के पास में चला। चुकनी चुपड़ी बातें उनको बहुत करने आती है। कैसे किसी को मन को रिझा सकते हैं वही जानते हैं। अभी आ रहे हैं राधा जी से के पास से और कुछ चिन्ह लगे हुए हैं उनके जो वहां से आ रहे हैं और जाकर के सफेद झूठ बोलेंगे। इतना विलंब क्यों हुआ? समय पर नहीं आ सके। मैं घर के काम में व्यस्त रह गया, सखाओं से घिरा हुआ था, इसलिए जल्दी नहीं आ सका। अरे झूठे लबाक, हम तो देख रहे हैं कि आप वहीं से होकर के आ रहे हैं। ऐसे झूठ बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को धृष्ट कहते हैं। गोपियां इनको धृष्ट कहती हैं। तो वो कैसे जानते हैं किसी को रिझाना? और यदि किसी तरह से मैंने तो बंसी बजा दिया, बस फूर उड़ गया उनका मान और क्रोध। ऐसे एक के लिए वो कृष्ण दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, सबको पास में कहेंगे। एक छोटा सा भी भक्त है सुदामा विप्र को छोड़ देंगे, अर्जुन को छोड़ देंगे, द्रौपदी को छोड़ देंगे, कृष्ण नहीं छोड़ सकते। किंतु ये गोपियां या भक्त सबको छोड़ देंगे। द्वारका की रहने वाली जो ये हैं सत्यभामा रुक्मिणी, उनको लड़का भी है। दस दस लड़के हैं, दो दो तीन तीन लड़कियां हैं।
एक एक लड़की,
एक एक लड़की, एक एक लड़की, दस दस पुत्र हैं।
अच्छा,
तो एक रुक्मिणी को यदि 10 पुत्र हैं, एक तो कृष्ण और 10 लड़के एक लड़की, उनका प्रेम कितने भाग में बट गया, 10 से 1 11 और पति 1 12, 12 में से कृष्ण को 12वां भाग मिला रुक्मिणी का। आ रहा है समझ में, 12वां भाग केवल मिला। और गोपियों का प्रेम का पूरा कृष्ण को मिलता है, किंतु और सब लोग पूरा प्रेम नहीं दे पाते हैं। रुक्मिणी का इसलिए कुब्जा ने तो प्रेम किया, कुब्जा ने प्रेम किया, किंतु उसके प्रेम में कुछ गड़बड़ी है। क्या? जब से कृष्ण से मिली तभी तक उसका प्रेम, और केवल अपने सुख के लिए कृष्ण को प्यार कर रही। अब आप लोग चुपचाप बैठिए, नहीं तो कथा में डिस्टर्ब हो जाता है। पूजा ने प्रेम के लिए प्रेम में पूजा का प्रेम, कृष्ण ने उसको सीधा कर दिया। बड़ी सुंदर रूपसी स्त्री बन गई, और उनके वशीभूत होकर के कृष्ण का दुपट्टा खींच करके अपने घर ले जाना चाह। उन्हें कहा समय आने पर मैं आऊंगा। वो अपने सुख के लिए कृष्ण को चाहती है, इसलिए उसके प्रेम में दाग कुछ है। कृष्ण ऐसा दाग वाला प्रेम नहीं चाहते, इसको साधारणी रति कहला प्रेम। और वहां का है द्वारका वाला रुक्मिणी और सप्तभामा इत्यादि का है, वो समंजसा। समंजसा माने क्या? वो समन्वय करने वाली है, तूक बैठाने वाली, अर्थात अपने बेटे को भी प्यार करेगी, अपनी लड़की को भी प्यार करेंगी, और घर की जितनी चीजें हैं उस सबका भी प्यार करेंगी, उनको भी ठीक रखेंगी, और पति को भी प्यार करेंगी, सबका सामंजस्य करता है। और सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि हैं, इनके साथ भी सामंजस्य करना है। इसलिए ये सबके साथ उस प्रेम को सामंजस्य करती हैं, इसलिए समंजसा है। इसलिए कृष्ण को 1/12 भाग ही वशीभूत कर सके, और उनका प्रेम है समर्था। कृष्ण को कहेंगे जब उठिए तो उठेंगे, और कृष्ण को कहेंगे जब बैठिए तो बैठेंगे। ब्रज की सभी गोपियां और उनमें से भी अष्ट सखियां इत्यादि की तो बात क्या, और उसमें भी श्रीमती राधिका। राधिका के यदि पैर के महावर यदि पूछ जाए तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने हजारों प्राणों से अपनी गोदी में उस चरण को लेकर बड़े प्रेम के साथ में उस पर महावर लगा करके अपने चरणों में अपने अंक में उसका छाप मार लेते हैं। मैं छाप मारा हुआ दास हूं, कृष्ण स्वयं भगवान होकर। ऐसा ब्रज का प्रेम समर्थ। ऐसे प्रेम को छोड़ करके चले गए मथुरा और फिर कभी नहीं लौटे, इसका कारण क्या? कारण ये, रास के पश्चात गोपियों की भावनाएं इतनी अधिक सुदूर प्रेम में डूब गई, उनको यही भावना जब कृष्ण को देखती हैं तो यही भावना उठती है, कहीं कृष्ण से हमारा विरह न हो गया। इसलिए कृष्ण से विरह होने के पहले ही विरह में वो एकदम प्रमत्त हो जाती हैं, रोने लगती हैं। प्रेम सरोवर में एक समय राधा जी अपनी सहेलियों के साथ में वहां थी, कृष्ण आए। कृष्ण और राधा जी परस्पर गलबंकियां देकर के बैठे हैं। उसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ आया राधा जी के चरण कमलों को कमल मान करके उसके सुगंध से आकर्षित हो और भन भन करके उड़ने लगा, मानो कमल में बैठेगा। राधा जी डरने लग गई और वो उड़ रहा है और कभी ऐसे कर रही है, कभी ऐसे कर रही है। जब डरने लगी तो मधुमंगल आया और एक लठिया लेकर के उसको ऐसे ऐसे करता हुआ बहुत दूर ले गया, बहुत दूर एक उनको पहुंचा। जब लेकर के चला गया तो लौट करके आया, बोला मैंने मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया, वो कभी नहीं आएगा। उनके अंक में कृष्ण है और उन्होंने यह सुन करके विरह में छटपटाना आरंभ कर दिया। ये मधुसूदन कृष्ण का नाम भी या मधुसूदन भौरे का नाम भी, उन्होंने जब कृष्ण को भगा दिया और कृष्ण कभी नहीं आएंगे, पर विरह में तड़पते वहीं पर मूर्छित हो गई। कृष्ण ने देखो तो ये कैसी, इसको कहते हैं प्रेम विवर्त अथवा ये मादन अवस्था की अंतिम स्थिति है प्रेम। कृष्ण देखो मैं इसके अंक में हूं और विरह में छटपटा रही है जो मैं नहीं हूं। और कभी कृष्ण ने देखा कृष्ण नहीं है, कृष्ण छिप गए एक तमाल वृक्ष के पीछे। राधा जी कुछ विरह में चिंतन करती 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 उस तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ कर उससे हंस करके बोलने लगी और पेड़ को आलिंगन करके कृष्ण से मानो हंस सर के बोल रही है, श्रृंगार कर रही है, कितनी मधुर भावों से बातचीत कर रही। कृष्ण देखो जो मैं नहीं हूं और ये इस प्रकार से मिलन जैसा इनको हो रहा है, विरह में मिलन और मिलन में विरह, सब समय इनको ऐसे होते होने लगी। उन्होंने देखा कि यदि इनके पास में रहूंगा तो इनको दुख देना होगा, इसलिए हमको यहां से हटना होगा, जिससे कि सब समय इनको ये अनुभूति हो, विरह में वो ऐसे हो जाए जो मिलने का भाव आए और उस मिलने में इनको आनंद हो। गोपियों के दो साथियां थी कृष्ण के जाने के बाद, एक नींद और दूसरी मूर्छा, प्रिय सखियां। इसी में उनको कुछ शांति मिलती थी, जब तक होश में रही रही हैं तब तो तड़फड़ करके रो रही हैं, यदि सो गई तो तो सो भी सोना भी ये नींद भी चली गई कृष्ण के साथ, अब उनको नींद नहीं आती, और एक मूर्छा थी वो मूर्छा भी नहीं आ रही, वो भी इनको छोड़ करके चली गई। इन्हें मूर्छा भी नहीं होती, वो समझती हैं जिसे कृष्ण से हम मिल रहे हैं। कृष्ण इन भावों को देख करके सोचा यहाँ रहने से इनको कष्ट होगा, सब समय छटपट करेंगे, इसलिए मुझको कहीं चलना चाहिए। कहाँ जाऊं? तो फिर देखा यदि मैं ऐश्वर्य भूमि में जाऊं तो अपने को कुछ सिखा सकूंगा, इसलिए माधुर्य भूमि को छोड़ करके गोपियों को संतुष्ट करने के लिए। और प्रश्नों का उत्तर मैं समय अनुसार से बीच बीच में दे दिया करूंगा, अच्छी तरह से समझेंगे। ये प्रेम की अत्यंत ऊंची स्थिति है, यदि अधिक बोलूं तो तब फिर इधर में कथा का समय 8 तो बज गया है, चला जाएगा, इसलिए और दिन में हम इसको बतलाएंगे धीरे धीरे। अब कथा आरंभ हम लोगों की हो। राधा रमन हरि गोविंद जय।
द्वारकापुरी में
पहुंचे, मंगल इत्यादि सब होने लगे, ब्राह्मण लोग मंगल वाचन कर रहे और सारी प्रजाएं आनंद से झूमने लगी, महिलाएं कीर्तन करने लगी, पुरुष भी आनंद से कीर्तन करने लगे। अब यहाँ पर नंदूमल जी भी बड़े आनंद से सबके साथ में, कृष्ण की शादी हो गई इसलिए सभी लोग मिलकर के आनंद से कीर्तन करने लगे। अब ये कीर्तन कीजिए तो
महिलाओं की
बहुत जोर से उत्साह होगा। हम लोग भी यहाँ पर कल ठाकुर जी का जो भोग लगा था अन्न 56 को 56 भोग, आज सवेरे ही लोग कह रहे हैं कि आज ही वो प्रसाद सबको वितरण होगा, इसलिए रुक्मिणी के विवाह के लिए सब लोग प्रसन्न हो करके आज वो उस समय वो प्रसाद देंगे। आप लोग यहाँ पर पाठ प्रवचन समाप्त होने के बाद में, आरती होने के बाद में ठाकुर जी का दर्शन करके और धीरे 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 दरवाजे पर ब्रह्मचारी लोग खड़े हो जाएंगे और वहीं से प्रसाद आप लोगों को दिया। गौ प्रेमानंद राजकुमारियों से कृष्ण ने विवाह रूप रुक्मणी इत्यादि के साथ में जैसे भी बात आप लोगों ने सुना, सत्यभामा लक्ष्मणा कालिंदी मित्र बिंदा इत्यादि के साथ उन्होंने शादी की, फिर भी पेट नहीं भरा तो वो नरकासुर के राज्य में जाकर उससे युद्ध करके उसे मारा और उसके जेल में बंदी 16,100 विभिन्न देश की बड़ी बड़ी सुंदरी कन्याएं थी, किशोरियां थी, उनको जेल से निकाला और किस प्रकार से वो ले आए और उनसे भी शादी करने के बाद में एक दिन वो रुक्मिणी के पलंग पर बैठे थे। इतने में उनको कुछ सूझी और रुक्मिणी को, रुक्मिणी उनका पंखा झल रही थी, दासियों के हाथ से पंखे और चमर इत्यादि ले लिया और अपने आप रानियां और रुक्मिणी स्वयं उनको पंखा झल बड़े प्रेम के साथ। कृष्ण कुछ गंभीर हो गए और गंभीर होकर के बोले, देखो राजकुमारी, आप विश्व सुंदरी हैं, इसमें विश्व में आपसे कोई बढ़ करके सुंदरी, रूपवती और गुणवती नहीं है, सब विषय में आप श्रेष्ठ हैं। आप राजा की लड़की हैं और मैं एक साधारण सामंत का लड़का हूं जिसको कंस ने जेल में न जाने कितने वर्षों में रखा। आप परम सुंदरी हैं गौर वर्ण की और मैं काला कलूठा। आप सब गुणों से गुणी हैं और मैं निर्गुण, कोई भी गुण हमारे अंदर नहीं। आपको विश्व का ऐसा कोई राजकुमार नहीं है जो नहीं चाहता। सब लोग तुमसे शादी करना चाहते थे किंतु मैं बीच में जाकर के तुम्हें हरण करके ले आया, तुमसे शादी भी कर दी। अब मैं विचार करके मैं बहुत लज्जित हो रहा हूं कि तुम सब गुणों से संपन्न और जगत के सब बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े सुंदर देवता तो तुमको चाहते हैं किंतु मैं न जाने क्यों तुम्हारे भाग्य में काला कुलूठा मिल गया। दूसरी बात, तुमको तो सभी चाहते हैं और हमको सभी नहीं चाहते। हमको कौन चाहते हैं? जो लक्ष्मी से भ्रष्ट है, जो दरिद्र है, जिनका कोई सहारा नहीं, सब प्रकार से असहाय, वो लोग मुझे केवल चाहते हैं। धनी लोग तो हमको चाहते नहीं, वो लक्ष्मी जी, गणेश जी इत्यादि सबकी वो पूजा इत्यादि करते हैं, हमें कोई नहीं चाहता। बस गरीब लोग, असहाय लोग हमारी पूजा करते और हमको चाहते। मैं बहुत ग्लानी से युक्त हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं तुमको क्यों यहां से लाया? अरे शिशुपाल, इतना सुंदर, इतना प्रतापी राजा और उसे तुम्हारी शादी हो रही थी, मैं तुम्हें हरण करके लिया, बहुत तुमको कष्ट दिया, अब आपसे मेरा निवेदन है कि बहुत जो कुछ हुआ हुआ, अब आपको मैं स्वतंत्र कर देता हूं। आपको जिससे शादी इच्छा है, विश्व में जिसको आप चाहती हैं, मैं खुद पहुंचा दूंगा आपको वहां, और आप उससे शादी कर लें। यदि कहो जिसे अब तो आपकी पत्नी हो गई, अब मुझको कौन लेगा, मुझसे कौन शादी करेगा? अरे ऐसा मत कहो, ये जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन, कर्ण और जितने बड़े बड़े राजन्य वर्ग हैं, वो मुझे नीचे दिखलाने के लिए, मुझे नीचा पराजित करने के लिए, जरूर हमारी पत्नी तभी तुमसे वो शादी कर लेंगे। इसलिए इसके लिए चिंता मत करो, बस मुझसे आदेश दो कहां तुमको ले चलो। और इतना करके गंभीर हो गए। रुक्मिणी सुनते ही जो पंखा जल गई थी, हाथ से पंखा गिर गया और चमर भी गिर गया, और देखते देखते एकदम कटे हुए वृक्ष की भांति वो जमीन पर गिर गई। और पहले तो दो एक लंबी सांस ली और उसके बाद में एकदम उठी। कृष्ण पलंग से उठ करके नीचे आए और उसके सिर को अपने गोदी में रख।